ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चुनाव के लिए सुरक्षा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ किया गया है, गृहमंत्री अर्याल का कथन। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए फागुन 20 से 22 गति 3 दिन सार्वजनिक छुट्टी देने की निर्वाचन आयोग ने सरकार से की है सिफारिश। रोहतक में शांति बनाने की अपील करने का सर्वदलीय बैठक का निर्णय और ईरान पर अगले हफ्ते सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय हो चुका है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी का दावा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए फागुन 20, 21 और 22 गते को सार्वजनिक छुट्टी देने की सरकार से सिफारिश की है। चुनाव में उत्साहपूर्ण सहभागिता बढ़ाने के लिए मतदान के एक दिन पहले, मतदान के दिन और उसके अगले दिन सहित 3 दिन सार्वजनिक छुट्टी देने की सिफारिश आयोग ने की है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता सह सचिव नारायण प्रसाद भट्टराय ने दी। बता दें कि फागुन 18 गते सोमवार पहाड़ी जिलों में और 19 गते मंगलवार को तराई के जिलों में होली पर्व की सार्वजनिक छुट्टी दी गई है। आयोग का मानना है कि 3 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी देने से अपने पेशे और व्यवसाय को लेकर अपने मतदान स्थल से दूर रहे मतदाताओं को सहजता होगी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि चुनाव के लिए सरकार सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ कर लिया है, इसलिए मतदाता निश्चिंत होकर मतदान करें। आज रासा के साथ बातचीत में गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि एकीकृत सुरक्षा योजना को लागू कर पूरे देश में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ और सबल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधि का शासन और सुशासन बहाल करने, जनता को सेवा प्रवाह की स्थिति को बेहतर करने और जनता के मन जीतने के इरादे से काम कर रही है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने आग्रह करते हुए कहा है कि कुछ लोग अभी भी फागुन 21 गते को चुनाव न होने की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इन अफवाहों पर कोई भी भरोसा न करें। आज गोरखापत्र संस्थान द्वारा आयोजित निर्वाचन संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने ये बात कही। तय तिथि में ही चुनाव होने को लेकर विश्वस्त रहने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि फागुन 21 को होने जा रहा ये चुनाव इस शताब्दी का ही सबसे पेचीदा चुनाव भले ही है, लेकिन आयोग इसे सहजता के साथ संपन्न करने में जुटा हुआ है। नेपाली कांग्रेस ने फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए निष्पक्ष और भयरहित वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कांग्रेस ने चुनाव के लिए निष्पक्ष और भयरहित वातावरण सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने का सरकार से आग्रह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा कि सरकार की अब तक की भूमिका पर कांग्रेस ने संदेह नहीं किया है, लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण में अपना मत डालने के जनता के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करने के दायित्व से दायां बायां होने की छूट सरकार को नहीं है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने निर्वाचन आचार संहिता के पालन करने और करवाने के मुद्दे पर गंभीर होने के लिए निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है। राप्रपा ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने में गंभीरता दिखाने की अपील आयोग से की है। रोहतक में सामाजिक एकता और सद्भाव को बिगाड़ने तथा सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राप्रपा ने सामाजिक सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की है। चुनाव को अधिक से अधिक सहभागितापूर्ण बनाने और अमान्य मतों के प्रतिशत को कम करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकों को परिचालित कर देशभर में मतदान शिक्षा कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है। ये जानकारी आयोग ने दी। रोहतक के गौर में हुई सर्वदलीय बैठक ने शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों की ओर से संयुक्त सार्वजनिक अपील जारी करने का निर्णय किया है। रथट की गौर नगरपालिका 6 सबगढ़ा में पिछले 2 दिनों से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने और स्थायी शांति बहाल करने के लिए प्रमुख जिला अधिकारी दिनेश सागर भूसाल की अध्यक्षता में आज जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में 5 बिन्दुओं पर सहमति बनी। बैठक में विवाद समाधान के लिए दोनों पक्षों के स्थानीय लोगों की सहभागिता में जिला सुरक्षा समिति द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक संवाद को तेज करने का निर्णय किया गया। घटना को तोड़ मड़ोड़ कर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए सुरक्षा निकायों को सहयोग करने का भी निर्णय किया गया। इसी प्रकार बैठक में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने, गिरफ्तार किए गए लोगों के दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने और जिले भर में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए नागरिक समाज के नेतृत्व में कल सुबह 7:30 बजे सबगढ़ा में सद्भाव रैली आयोजित करने का निर्णय किया गया। जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया कि रौथट में कर्फ्यू आज सुबह 2 घंटे के लिए ढीला किया गया था, लेकिन सुबह 9 बजे से फिर से यथावत लागू करने का निर्णय किया गया है। दोनों पक्षों के बीच तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं बढ़कर स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के बाद कल दोपहर 1 बजे से कर्फ्यू आदेश जारी किया गया था। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय रौथट ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने ईरान पर हमला करने की संभावित तारीख बताते हुए कहा कि अगले हफ्ते हमला हो सकता है। CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने दावा किया कि US अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान के खिलाफ सैन्य हमले को लेकर आखिरी फैसला करेगा। हालांकि वाशिंगटन की ओर से पब्लिक मैसेज इस ओर इशारा करते हैं कि कूटनीति का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। न्यूयॉर्क के मशहूर जूलियन डोरे पॉडकास्ट के दौरान पूर्व CIA अफसर किरियाकू ने बताया कि उनका एक दोस्त पूर्व CIA अधिकारी है। वह व्हाइट हाउस में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने बताया कि सोमवार 23 फरवरी या मंगलवार यानी 24 फरवरी को ईरान पर हमला करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन, हमास जैसे समूहों को समर्थन देने से बंद करने का एक व्यापक प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है, लेकिन ये डेडलाइन आर्मी के एक्शन को टालने की गारंटी नहीं देती है। उन्होंने इसे रणनीति करार देते हुए कहा कि वे आपको 10 दिन का या 2 सप्ताह का समय देंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही हमला कर देंगे। CIA के पूर्व अफसर के दावों के बीच US ने मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदैद अड्डे से सैनिकों को ट्रांसफर किया जा रहा है। अमेरिका के बहरीन से लेकर इराक, सीरिया, कुवैत, UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर बदलाव देखने को मिला है। अमेरिका के संभावित हमले को लेकर ईरान भी तैयारियों में जुटा है। ईरान ने अपने संयुक्त राष्ट्र मिशन के जरिए कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इलाके में दुश्मन देश की सेना के सभी अड्डे टारगेट में होंगे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगान सीमा क्षेत्र में 7 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि इस हमले में उसके कई नागरिक मारे गए हैं, इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। BBC पश्तो के मुताबिक तालिबान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ये हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया। BBC पश्तो के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के बेहसूद जिले में एक घर पर हुए हमले में कम से कम 18 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख का कहना है कि मृतकों में 11 बच्चे शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव के लिए सुरक्षा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ किया गया है, गृहमंत्री अरियाल का कथन। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए फागुन 20 से 22 कथित 3 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी देने की निर्वाचन आयोग ने सरकार से की है सिफारिश। रोहतमे शांति बनाने की अपील करने का सर्वदलीय बैठक का निर्णय और ईरान पर अगले हफ्ते सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय हो चुका है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।